بسم الله الرحمن الرحيم فبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين پروردگار عالم آپ تمام برادران کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. خداوند متعال آپ تمام دوستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. کافی دنوں سے پوری دنیا میں ہلچل مچی ہوئی ہے اور بہت ہی اضطراب کی کیفیت ہے پوری دنیا کے اندر. جتنے بھی لوگ ہیں وہ ایک بے یقینی کی کیفیت میں زندگی گزار رہے ہیں. یہی واقعاً وہ زمانہ ہے جہاں پر انسان اگر پروردگار عالم پر حقیقی معنی میں ایمان رکھتا ہے تو اپنے آپ کو اس خوف, اضطراب اور بے چینی سے محفوظ پاتا ہے. درست ہے کہ دنیا کے اندر ایک وبا چلی ہوئی ہے, پوری دنیا ڈر رہی ہے, ہر کوئی غیر یقینی حالت میں ہے کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا, لیکن ایک خدا پرست انسان کہ جو پروردگار عالم پر حقیقی معنی میں ایمان رکھتا ہے, اس انسان کے لیے درست ہے کہ یہ گھڑی سخت ہے لیکن اضطراب کی کیفیت نہیں آنی چاہیے, پریشانی کی کیفیت اس کے لیے نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ آپ کے اور ہمارے عقیدے کے اعتبار سے یہ دنیا ایک گزرگاہ ہے, ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر انسان کو کچھ عرصے کے لیے بھیجا گیا ہے تاکہ اپنی آخرت اور اپنی ابدیت کو سنوار سکے, بنا سکے. لہذا میں یہ نہیں کہتا کہ اس دنیا کے اندر انسان ان بیماریوں کا, مشکلات کا مقابلہ نہ کرے, ان کے مقابلے میں جو احتیاطی تدابیر ہیں ان کو چھوڑ دے. نہ نہ, دنیا میں ہے, احتیاطی تدابیر بھی کرنی ہے. جو چیز میرے لیے مشکل ہے, میرے لیے نقصان دہ ہے, مجھے اس سے لڑنا بھی ہے, لیکن بالآخر انسان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ یہ جتنے بھی اسباب ہیں, درست ہے کہ اسباب اپنی جگہ پر ایک حقیقت ہے, لیکن یہ بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ ان اسباب کے پیچھے مسبب الاسباب خداوند متعال کی ذات ہے. وہی ذات عالی مقام ہے کہ جو اس کائنات کو اس طریقے سے تدبیر کر رہی ہے. اور میں نے بھی تو اس جگہ پر ہمیشہ نہیں رہنا, لہذا اس جگہ سے بالاخرے کسی نہ کسی وقت میں نے کوچ کرنا ہے, جانا ہے, تو بہت زیادہ پریشان ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ہاں, البتہ اس میں شک نہیں ہے کہ انسان کو اس بات کے لیے پریشان ہونا چاہیے کہ میں اس دنیا سے جو دوسرے عوالم کی طرف سیر کروں گا, دوسرے عوالم کی طرف جاؤں گا جہاں پر میری ابدیت ہے, جہاں پر میری ہمیشہ والی زندگی ہے, اس ہمیشہ والی حیات کو آباد کرنے کے لیے, اس ہمیشہ والی حیات کو تعمیر کرنے کے لیے میں نے کیا کیا ہے. اگر کچھ نہیں کیا تو اب بھی وقت نہیں نکلا, اس اپنی ابدیت کو, اس اپنی حیات کو आबाद करने के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत है उन चीजों में मुझे सुस्ती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मेरी अबदियत का मसाला है। यहां पर आप देखते हैं कि एक इंसान कुछ अरसे के लिए होता है, नॉर्मली एतबार से अगर म्यानगीन दरमियानी कैफियत को देखा जाए तो दरमियानी कैफियत हर इंसान की इस दुनिया में यह है कि 60-70 साल जिंदा रहता है, ये दरमियानी म्यानगीन है। 60-70 साल के लिए मैं जब यहाँ पर आता हूँ तो कितनी प्लानिंग करता हूँ, कितनी तदबीर करता हूँ, अपने बच्चों के बारे में सोचता हूँ कि सोचना भी चाहिए, उनके मुस्तकबल और फ्यूचर के बारे में बड़ी बड़ी प्लानिंग होती है मेरी कि ये मेरा बच्चा क्या करेगा, किस तरीके से होगा, कि ये सारी चीज़ें करनी चाहिए, इनका कोई इनकार नहीं है। लेकिन जब हम 60-70 साल जिंदगी के लिए इतनी प्लानिंग करते हैं, इतनी तदबीर करते हैं, इतना सोचते हैं, तो क्या वाकई हम लोगों को अपनी उस अबदी हयात के बारे में नहीं सोचना चाहिए, उस अबदी जिंदगी के बारे में नहीं सोचना चाहिए कि जहाँ पर हमेशा मैंने रहना है? अब जिस जगह पर मैंने हमेशा रहना है वहाँ पर अपने रहने के लिए मैंने क्या आमादा किया है, मैंने वहाँ के लिए कौन सी तैयारी की है? क्योंकि बिलाखर मेरे हकीकी फ्यूचर और हकीकी मुस्तकबल का मसाला है। इंसान का हकीकी फ्यूचर और हकीकी मुस्तकबल वही इंसान की आखिरत है कि उस आखिरत को मैंने किस तरीके से आबाद किया है, मैं अपनी उस आखिरत के बारे में क्या जानता हूँ। मुझे उस आखिरत की जब तक दुरुस्त तरीके से मारिफत नहीं होगी, सही तरीके से मारिफत नहीं होगी, तब तक मैं अपनी आखिरत को आबाद नहीं कर सकता। तब तक मैं अपनी आखिरत को सही तरीके से आबाद करने की असलन सलाहियत नहीं रखूंगा। लिहाजा ज़रूरी है कि इंसान अपने हकीकी फ्यूचर और हकीकी मुस्तकबल के बारे में गौर व फिक्र करें। और ये भी एक जबरी नेमत जो आपको और हम लोगों को नसीब हुई है कि हम लोग अपने घरों में बंद हैं, तनाव बैठे हुए हैं, अपनी इस तन्हाई से, अपनी इस खलवत से खूब इस्तेफादा करना चाहिए। और इंशाल्लाह अगर ये हमारा सिलसिला आगे चला तो इंशाल्लाह अर्ज करेंगे कि उस आलम को आबाद करने के लिए सबसे बेहतरीन फुर्सत इंसान के लिए खलवत है, तन्हाई है। अपनी इस खलवत से, अपनी इस तन्हाई से खूब इस्तेफादा करे, बेहतरीन फायदा ले, जितना फायदा ले सकता है उतना फायदा ले, और अपनी अबदियत को संवारे, अपनी अबदियत को आबाद करे, अपनी आखिरत को आबाद करे। बिलाखिर इस दुनिया से जाना है, दुनिया ये वो जगह नहीं है कि जिस जगह के अंदर इंसान को हमेशा के लिए रखा गया है। इस जगह से इंसान जाएगा, हर सूरत में इस जगह को लपेट दिया जाएगा। ये जो दस्तरखान यहाँ पर दुनिया का बिछा हुआ है, बिलाखिर एक दिन इस दस्तरखान को लपेट दिया जाएगा। और आप और हम तो हर रोज देखते हैं कि हमारी आंखों के सामने कितने लोग आए दिन के, आजकल की दुनिया में तो देखें हर मिनट में, हर लम्हे में कोई ना कोई उधर जा रहा है। तो बिलाखिर मैं कब तक अपने आप को गाफिल रखूंगा, कब तक मैं झूठी आरजुओं में अपनी ज़िंदगी को तबाह बर्बाद करता रहूंगा। लिहाजा बस दोस्तों ने बहुत ज़्यादा इसरार किया कि खुद इस माद के बारे में, आखिरत के बारे में एक सिलसिला गुफ्तगू होना चाहिए, खुसूसन सैयद बुजुर्गवार किबला सैयद वजाहत हमदानी के, परवरदिगार आलम उनकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए। उन्होंने बहुत ज़्यादा इसरार किया कि इस मौजू को आप चलाएं यहाँ पर, कि इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि इस माद और आखिरत के बारे में कुछ बुनियादी मतालब आपकी खिदमत में अर्ज करें। क्योंकि गाहे बगाहे हम लोग ये मबाहिस सुनते रहते हैं, हमारी कानों से ये बातें टकराती रहती हैं, लेकिन मुनज़्ज़म तरीके से, मुनक्कह तरीके से, तहलीली तरीके से मामूलन हम इस माद के बारे में गुफ्तगू नहीं करते। वो जो हमारी हकीकी और अबदी हयात है उसके बारे में एक तहलीली अकलानी बहस हम लोग नहीं करते। इसीलिए हमारे लिए बहुत सारे सवालात भी उठते रहते हैं। कभी कभार कोई मौका आ जाता है, किसी के सामने बयान कर दिया, कहीं से कोई जुमला सुन लिया, तो थोड़ी बहुत दिल को तशफ़ी हो जाती है, लेकिन हकीकी माना में इन मबाहिस को दुरुस्त तरीके से हल करना और सही तरीके से मारफत हासिल करना ये बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। क्योंकि बिलाखरे मैंने उस आलम की तरफ जाना है, खुदावंद मुताल ने अपने किताब के ज़रिए से, अपने अम्बिया के ज़रिए से, आइम्मा और औलिया के ज़रिए से और अक्ल जैसी नेमत के ज़रिए से इंसान को बताया है कि वो आलम क्या है, लेकिन हम लोग गाफिल होते हैं। तो कोशिश करेंगे इन चंद दिनों में आखिरत के बारे में, माद के बारे में, यानी इस दुनिया के बाद वाले आलम के बारे में गुफ्तगू करें, लेकिन हमारी गुफ्तगू के अंदर जो जंबा गालिब होगा वो तहलीली अकली और फलसफी जंबा होगा। यानी ज़्यादातर हमारी कोशिश ये होगी कि कुरान और सुन्नत और अक्ल के ज़रिए से उस आलम की जितनी मारिफत हम हासिल कर सकते हैं उस मारिफत को हासिल करें। यानी दूसरे लफ्ज़ों में इस गुफ्तगू के अंदर हमारा जंबा बहुत ज़्यादा अखलाकी और मोइज़े वाला नहीं होगा। अगरचे खुद बजात खुद इन मबाइस के ज़मीन में अखलाकी जंबा भी है, मोइज़ा भी है, नसीहत भी है, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमारे मद्देनज़र ये वाला जंबा नहीं है। हमारे मद्देनज़र जो इन दुरूस के अंदर जंबा मद्देनज़र है वो इस माद के बारे में, आखरत के बारे में, उस आलम के बारे में एक मारिफती गुफ्तगू करना मद्देनज़र है। तहलीली गुफ्तगू, अकली गुफ्तगू, फलसफियाना गुफ्तगू, जो भी आप इसको कहें, इस किस्म की बहस हमारे लिए मकसूद है। तो इंशाल्लाह कोशिश ये होगी कि इन मबाहिस को इसी मारिफती जंबे में और तहलीली जंबे में आपके सामने पेश करें। दूसरी बात कि इन मबाहिस को शुरू करने से पहले माद के बारे में बहुत ज़्यादा आयात, बहुत ज़्यादा रिवायात भी हैं और हम लोग सुनते भी रहते हैं और उन आयात और रिवायात को थोड़ा बहुत किताबों में पढ़ भी लेते हैं, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि ये खुद माद और आखिरत के जो मबाहिस हैं इसके बारे में जैसे जिद्दी तरीके से तहलीली और दिक्कत के ज़रिए से बहस करनी चाहिए, हमारे यहाँ बहुत ही कम इस पर इस तरीके से बहस हुई है। हत्ता जो माद के नाम पर भी किताबें लिखी जाती हैं मामूलन उनमें फ़कत अहादीस को लिख दिया जाता है और उनका तर्जुमा पेश किया जाता है, या फ़कत ज़ाहिर की हद तक हम उन अहादीस को देखते हैं और तर्जुमे की तरफ तअब्बुदन हम लोग तवज्जो करते हैं, लेकिन इस बहस के अंदर, माद के मबाहिस के अंदर, माद की जो आयात हैं, माद के बारे में जो रिवायात हैं, उनके अंदर वाकई गहराई के साथ तहलीली तरीके से, दिक्कत के ज़रिए से, एक निज़ाम के तहत वाकई गुफ्तगू करना बहुत ही ज़रूरी है। हमारे यहाँ देखें जैसे फुकाह हज़रात हैं, फिकी रिवायात के अंदर वो आते हैं बाकायदा, बहुत ज़्यादा उसूल कवायद उनको मुशख्खस करते हैं, उनको तरतीब देते हैं, आयात को एक दूसरे के साथ जमा करते हैं, रिवायात को एक दूसरे के साथ जमा करते हैं, फिर खुदावंद मुताल ने जो अक्ल जैसी नेमत दी है उसको भी सामने रखते हैं, इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उससे कवायद को इस्तेखराज करते हैं, उन कवायद की रोशनी में फिर आकर मुख्तलिफ आयात को समझते हैं, मुख्तलिफ रिवायात को समझते हैं और बाकायदा एक सिस्टमेटिक और निज़ामंद तरीके से हमारे सामने फिक्र आल मोहम्मद आती है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फुकाह की बहुत बड़ी जहमत है उसमें, तो खुदावंद मुताल उनको अजर अजीम इनायत फरमाए। यानी ऐसे नहीं होता कि फिकी मसले में शरई मसले में कोई भी बंदा आए अपनी तरफ से एक रिवायत को उठा ले और उससे आकर कहे कि शरीयत इस तरीके से कहती है, ना इस तरीके से फुकाह इजाजत नहीं देते, उलमा इजाजत नहीं देते, इंसान की अक्ल भी इंसान को इजाजत नहीं देती कि भाई अगर तुम वाकई काम करना चाहते हो फिक के अंदर या शरीयत के अंदर अहकाम फिकिया के अंदर काम करना चाहते हो तो फिर ऐसे नहीं है कि सिर्फ रिवायत का एक टुकड़ा पकड़ के तुम उससे आकर एक शरीयत के हुक्म को समझो, ना अगर वाकई तुमने फिक्र आल मोहम्मद को समझना है तो मजमूई रिवायात को तुम्हें मद्देनजर रखना पड़ेगा, फिर उसके बाद जमबंदी तुम्हें करनी पड़ेगी, उन कवायद जवाबित उसूलों को मद्देनजर रखोगे कि जो इन्हीं रिवायात से इन्हीं आयात से इसी अक्ल के जरिए से इंसान समझता है, इस्तेखराज करता है, इस्तिंबात करता है, फिर उन कवायद और जवाबित की रोशनी में आकर रिवायात को समझता है कि ये एक वाकई सिस्टमेटिक और निज़ाम मंद तरीका है कि अल्हम्दुलिल्लाह 1000 साल से ज्यादा हमारे फुकहा ने इस सिस्टम पर इस निज़ाम पर कि जो इस वक्त आपके सामने फिक्र आले मोहम्मद की शक्ल में मौजूद है काम किया है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त एक बेहतरीन निज़ाम की शक्ल में आपके और हमारे सामने फिक्र आले मोहम्मद मौजूद है। जरूरत इस अमर की है कि जिस तरीके से फिक्र के अंदर जिस तरीके से अहकाम शरिया के अंदर वाकन ऐसे नहीं किया जाता कि रिवायत के एक हिस्से को पकड़ लिया और फौरन उससे आकर एक नतीजा ले ले इंसान, ऐसे नहीं होता, बल्कि जैसा कि मैंने अर्ज किया कि एक पूरे निज़ाम की शक्ल में हमारे सामने उसूल और कवायद और जवाबित होते, फिर उन उसूल कवायद जवाबित के ज़ैल में आकर हम इन आयात रिवायात वगैरह को समझने की कोशिश करते हैं। तो यही काम हमारे मारिफती मबाइस में होना चाहिए, हमारे एतकादी मबाइस में होना चाहिए। मसलन जैसे माद के बारे में जो आयात है, माद के बारे में जो रिवायात है, उनके बारे में भी इस तरीके से उजलत नहीं करनी चाहिए कि माद के बारे में हम आए और किसी जगह से एक रिवायत का हिस्सा पकड़ लिया और उसी के मुताबिक आकर हम फैसला करें माद तो यूं होती है, कयामत तो यूं होती है, मौत तो ये है, कब्र से तो मुराद ये है, बरज़ख से तो मुराद ये है, फिशार कब्र से मुराद तो ये है, कब्र के अंदर जो मलाइका आते हैं उनसे मुराद तो ये है, कब्र के अंदर जो अजाब होता है उससे मुराद तो ये है, कब्र के अंदर जो नेमतें आती हैं उनसे मुराद ये तो है, या आखिरत में जो हश्र है उस हश्र से क्या मुराद है, बाद से क्या मुराद है, और इसी तरीके से जितने भी आखिरत के मवाकिफ हैं उन तमाम मवाकिफ को हम लोग जब आकर बयान करते हैं तो इब्तदाई एक जाहिरी सा तर्जुमा देखकर उसके मुताबिक फौरन कजावत करना शुरू कर देते हैं, हालांकि इस तरीके से नहीं करना चाहिए। यहाँ पर भी वही काम होना चाहिए, एक आलमाना तरीके से, एक तहकीकी तरीके से माद के बारे में उसूल कवायद जवाबित जो इन्हीं कुरान मजीद की आयात से रिवायात से, और सबसे बड़ी नेमत जो परवरदिगार आलम ने इंसान को अक्ल की दी है, उस अक्ल के जरिए से, अक्ल की नूरानियत के जरिए से कि अक्ल वाकन एक हुज्जत बातिनी की हैसियत रखता है अपनी जगह पर, उसकी नूरानियत से इस्तेफादा करते हुए इंसान कवायद जवाबित को तरसीम करे, उन कवायद और जवाबित के ज़ेल में फिर आए और आकर आयात का तर्जुमा भी करे, रिवायात का तर्जुमा भी करे, फिर उसी के ज़ेल में आयात के हकायक को भी समझे, हकायक और असरार को भी समझे, रिवायात के हकायक और असरार को भी समझे कि ये काम होना चाहिए, माद के बारे में ये काम होना चाहिए, दूसरे मारिफती मबाइस के बारे में। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे यहाँ इस तरीके से काम नहीं होता। हम लोग दुनिया की दूसरी फील्डों में तो ऐसे करते हैं कि कोई भी अगर काम होता है तो वहाँ पर बड़ी जहमतें होती हैं, बाकायदा तखस्सुस होते हैं, बहुत ज़्यादा जहमतों के बाद आकर इंसान किसी मसले के अंदर नज़र देता है। लेकिन ये जो मारिफती मबाइस हैं कि जो बहुत ही एक लिहाज से अहम मबाइस हैं, वहाँ पर हम आकर बिल्कुल नाशियाना और इब्तदाई तरीके से नज़र देना शुरू कर देते हैं। अगर किसी उर्दू ज़बान की किताब में हमने किसी जगह पर किसी रिवायत को देख लिया तो फौरन नज़रिया बना लेते हैं, ना अजीज मन, इजमाली तौर पर दुरुस्त है कि हर इंसान का, हर मोमिन का ये अकीदा है कि मरने के बाद इंसान के सामने एक आलम है कि जिस आलम में इंसान का हिसाब हो किताब है, जन्नत है, जहन्नम है, ये इजमाली तरीके से हर मोमिन को पता है और हर मोमिन का अकीदा है, ये होना चाहिए। लेकिन मैं क्यों अपने आप को इस इजमाली मारफत तक महदूद करूँ, मैं क्यों ना इन्हीं आयात और रिवायात के अंदर और खुदावंद मुताल ने जो मुझे अकल जैसी नेमत दी है उसको भरूए कार लाकर इनके अंदर मैं तामुल करूँ, दिक्कत करूँ, तहलील करूँ, जिस हद तक समझ सकता हूँ उस हद तक समझने की कोशिश करूँ, वो कौन से असरार हैं, वो कौन से रमूज हैं, वो कौन सी जबान है कि जिस जबान में उस माद को बयान किया गया है, इनको अच्छे तरीके से इंसान समझे, इंशाल्लाह कोशिश करे, खुदावंद मुताल इंसान को महरूम नहीं रखेगा। और बड़े अफसोस के साथ मैं ये जुमला कहता हूँ कि मुतअस्सिफाना जिस तरीके से हमारे आम लोगों के दरमियान इन मबाइस पर उस तरीके से दकीक बहसें नहीं होती, बड़े अफसोस के साथ कहना चाहूँगा कि खुद हमारे रूहानियत में भी, हमारे उलमा के माबैन भी वाकयन इस मसले के बारे में जिस तरीके से आलमाना, जिस तरीके से तहकीकी और जिस तरीके से मुहक्किकाना गुफ्तगू होनी चाहिए उस तरीके से गुफ्तगू नहीं हुई, जिस तरीके से आलमाना और जिस तरीके से मुहक्किकाना काम होना चाहिए था इस माद के मसले के बारे में उस तरीके से काम नहीं हुआ। यानी हमारे फुकहा ने खुदावंद मुताल उनको जजाय खैर इनायत फरमाए, उन्होंने फिक के अंदर खूब काम किया, उन्होंने उसूल के अंदर खूब काम किया, बहुत ज्यादा जहमतें की, बाकायदा उस निजामात का नतीजा हमारे यहाँ एक मुनसजिम निज़ाम की शक्ल में है जो फिक आल मोहम्मद की सूरत में हमारे सामने है। 1000 सालों तक इन लोगों ने जहमतें की, बहुत ज्यादा कोशिशें की, कवायद पर तामुल किया, दिक्कत की, और उन दिक्कतों की वजह से, उन जहमतों की वजह से, उन मेहनतों की वजह से हमारे पास बेहतरीन निज़ाम आया। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इन मारिफती मबाइस में खुद हमारे हौजात के अंदर भी उस तरीके से काम नहीं हुआ, हमारे हौजात के अंदर भी फकत ज़ाहिर आयात को देखा गया, ज़ाहिर रिवायात को देखा गया और उन्हीं के मुताबिक फैसला किया गया। अफसोस कि यहाँ पर भी बाकायदा उसी तरीके से काम होना चाहिए था जिस तरीके से हमारे फुकहा ने फिक के बारे में काम किया, लेकिन इस तरीके से इन मारिफ की न रिवायात के बारे में आपको उस तरीके से काम मिलेगा, न इन आयात के बारे में उस तरीके से काम मिलेगा। ये मैं यहाँ पर कोई नऊज़ु बिल्लाह तोहीन नहीं करना चाह रहा, यहाँ पर मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं उलमा पर तनकीद करूँ, लेकिन एक हकीकत है जिस हकीकत को मैं बयान करना चाहता हूँ कि वाकयन जिस तरीके से हमने फिक के अंदर काम किया है कि वहाँ पर काम करना चाहिए था, उस तरीके से हमने मारिफती मबाइस में काम नहीं किया। हमारे यहाँ कलामी किताबों को उठाकर देखें, वही जो एक सतही इब्तदाई सतह का तामुल है उसी सतही तामुल तक हम फंसे हुए हैं, उसी को हमने समझा हुआ है, न उनके अंदर बाकायदा दकीक तरीके से गहराई के साथ तामुल किया, न उनकी उस तरीके से तहलील की, न वहाँ पर हमने कवायद को इस्तेखराज किया, न हमने वहाँ पर बाकायदा एक निज़ाम और सिस्टम बनाया, ना ना ना, बल्कि ज़ाहरी चंद रिवायात को देखा, चंद आयात को देखा, उनके मुताबिक जो ज़ाहरी इब्तदाई तर्जुमा हमारे जहन में आ रहा था उसी ज़ाहरी इब्तदाई तर्जुमे के तहत हम लोगों ने मसाइल को बयान करना शुरू किया और किताबों के अंदर लिखना भी शुरू कर दिया। या और बहुत ज्यादा अगर हमने काम किया तो वही निज़ाम कि जो निज़ाम हमने फिक आल मोहम्मद को समझने के लिए करार दिया था, यानी वो उसूल फिक जो इस फिक को समझने के लिए थी, वो कवायद व ज़वाबित जो इस फिक के लिए थे, हमने उन्हीं कवायद व ज़वाबित को भी काफ़ी समझा कि उन्हीं कवायद व ज़वाबित के जरिए से इन मारिफती मबाइस को भी हल करें, हालांकि ये बात दुरुस्त नहीं है। उन्हीं कवायद के जरिए से आप इन मारिफती मबाइस को हल नहीं कर सकते, क्योंकि फिक के अंदर तअब्बुद है, फिक के अंदर एतबारियात हैं, फिक के अंदर करारदादी कवानीन है, लिहाजा वहाँ पर जब एतबारियात हैं तो वहाँ पर मजन्ना भी चल जाता है, वहाँ पर अगर दलील आपके पास जन्नी हो तो वो दलील भी चल जाती है कि लेकिन लेकिन ये जो मारिफती और एतकादी मबाइस हैं ये मबाइस एतबारी नहीं है, बल्कि ये वो मबाइस हैं कि जिनमें एतकाद ज़रूरी है और एतकाद के लिए यकीन का होना ज़रूरी है। यहाँ पर तअब्बुद महज तो नहीं है कि आप ज़न्नियात के जरिए से वारिद हो, यहाँ पर तअब्बुद महज तो नहीं है कि जिसमें आप मजन्ने को लेकर आए, जन को लेकर आए, गुमान को लेकर आए اور اس ظن و گمان کے ذریعے سے مسائل کو حل کرنا شروع کر دیں. یہاں پر اعتباریات کی بات نہیں ہے, حقائق کی بات ہے, معارف کی بات ہے. جب حقائق کی بات ہے, معارف کی بات ہے, تو یہاں پر آپ کو اعتقاد چاہیے, اور اعتقاد کے لیے انسان کو یقین چاہیے, یقین کے لیے انسان کو برہان اور محکم دلیل چاہیے. بہرحال یہ ہمارے خود حوزات کے اندر بھی رہا, لیکن الحمدللہ کافی عرصہ پہلے ایک شخصیت خود عالم اسلام میں مکتب تشیع کے اندر نمودار ہوئی, کہ جس نے خود اس بحث معاد کے بارے میں اس تحلیلی بحث کی بنیاد رکھی, اور اس بندے خدا نے, کہ خداوند متعال اس کو اجر عظیم عنایت فرمائے, اس بندے نے ان قواعد اور ضوابط کو ترتیب دیا کہ جن قواعد اور ضوابط کے ذریعے سے آپ منسجم اور نظام مند طریقے سے اس معاد کے بحث کو سمجھ سکتے ہیں. کہ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جس بندے نے اس مسئلے کے اندر اتنی زحمت کی, اس بیچارے کو اسی مسئلے کی وجہ سے متہم کر کے ہمارے معاشرے سے دور کیا گیا. یعنی میری مراد صدر المطلحین شیرازی المعروف ملا صدرہ ہے, کہ یہ وہ پہلی شخصیت ہے کہ جس نے واقعا معاد کے مباحث کے اندر ایک تحول ایجاد کیا. وہ جو ہم فقط ظاہری ترجموں تک محدود تھے, وہ جو ہماری نگاہ آیات اور روایات کے بارے میں فقط ایک سطحی اور ابتدائی تھی, اس بندہ خدا نے آ کر معاد کے بارے میں جو آیات ہیں, معاد کے بارے میں جو روایات ہیں, یا معاد کے متعلق جو عقلی اصول انسان اپنی عقل سری سے حاصل کر سکتا ہے, ان کے اندر اس نے تعمل کیا, اور اس خدا کے بندے نے واقعا معاد کی آیات اور روایات کو سمجھنے میں ایک بہترین سسٹم اور نظام ہمارے سامنے پیش کیا. کہ الحمدللہ پھر بعد میں بہت سارے بزرگان آئے جنہوں نے اسی بزرگوار کے طریقہ کار کو ادامہ دیا, آگے چلایا, یہاں تک کہ مرحوم علامہ طباطبائی, امام خمینی, حضرت آیت اللہ جوادی آمولی جیسی شخصیات ہمارے سامنے معاصر زمانے میں ہیں. یعنی افسوس یہ ہے نا, یہ بالکل اسی طریقے سے مسئلہ ہے جس طریقے سے مکتب تشیع کو یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے ہاں توحید کا نظریہ درست نہیں ہے, نعوذ باللہ, یہ لوگ مشرک ہیں. حالانکہ سب سے زیادہ قوی توحید کے بارے میں نظریات مکتب تشیع کے اندر موجود ہیں, اسی مکتب کے اندر سب سے زیادہ قوی نظریات بھی موجود ہیں, لیکن کیونکہ ہم لوگ ان کو صحیح طریقے سے لوگوں تک پہنچاتے نہیں ہیں, یا سامنے والا مغرض ہے, جانتا بھی ہے, جان بوجھ کے اس طریقے سے پھیلانا چاہتا ہے, یا سامنے والا جاہل ہے, وہ مکتب تشیع کا جو توحید کے بارے میں نظریہ ہے اس کو صحیح طریقے سے نہیں جانتا, اس لیے یہ ساری باتیں پھیلاتا ہے. عیناً اعلی, بلا تشبیہ عرض کر رہا ہوں, یہی مسئلہ ہم لوگوں نے ملا صدرہ کے بارے میں بھی کیا ہے, کہ معاد کے بارے میں حتیٰ ملا صدرہ سے پہلے یہ تحلیلی عقلی اور دقت کے ساتھ مباحث آیات کے اندر اتنا دقیق تأمل ملا صدرہ سے پہلے ہمیں بالکل نہیں ملتا. دوسرے علماء نے جو زحمات کیے ظاہر کی حد تک اپنی جگہ پر ہے, اس بندہ خدا نے بہت زیادہ زحمت کی ہے. حتیٰ میں صرف فقہا کی بات کیوں کروں, میں فقط متکلمین کی بات کیوں کروں, بلکہ ملا صدرہ سے پہلے حتیٰ جو فلاسفہ حضرات گزرے ان لوگوں نے بھی معاد کے بحث میں اس طریقے سے بحث نہیں کی جس طریقے سے بحث کرنے کا حق ہے, اور ملا صدرہ اس چیز کے بارے میں بہت زیادہ تعصب بھی کرتے ہیں, افسوس کا اظہار بھی کرتے ہیں, اپنی تصنیفات میں بہت زیادہ افسوس کرتے ہیں, خود بو علی سینا پر, کہ بو علی سینا جیسی اتنی عظیم شخصیت کہ جو نابغہ روزگار تھا, اتنا عظیم مفکر, لیکن ملا صدرہ افسوس کرتے ہیں کہ ایکاش وہ بندہ جتنا ٹائم اس نے طب میں لگایا, جتنا ٹائم اس نے دوسرے علوم میں لگایا, ان کو چھوڑ کر اسے چاہیے تھا کہ خود معاد کے باس میں اور زیادہ وہ ٹائم لگاتا, اور زیادہ دقت کرتا, اور زیادہ تعمل کرتا, قرآن مجید کی آیات کے اندر, روایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر، احادیث پیغمبر کے اندر یہ تأمل کرتا، ان اسرار کو سمجھتا، کسی حد تک راستہ نکالتا، تھوڑا بہت آگے لے کر جاتا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نہ، اس طریقے سے بو علی سینا بھی معاد کے اندر جس طریقے سے بحث کرنی چاہیے اس طریقے سے بو علی سینا جیسا بندہ بھی بحث نہیں کرتا. اور پھر ملا صدرہ خود جو ایک بہت بڑے خاندان سے تعلق بھی رکھتا ہے، امیر خاندان سے تعلق رکھتا ہے، تقریباً وزارت کے گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، لیکن اپنے ان ظاہری تمام عیش و نوش کو چھوڑ کر علم کے لیے اپنی زندگی کو وقف کرتا ہے. حتیٰ ان حقائق اور معارف کو اچھے طریقے سے حل کرنے کے لیے آبادی سے باہر نکل آتا ہے، شہر سے باہر نکل آتا ہے، قم کے باہر آ کر ایک چھوٹا سا دیہات ہے، جنگل ہے، کاہک نامی، وہاں پر آ کر بیٹھتا ہے. وہاں پر ملا صدرہ ایک طرف سے قرآن کے اندر تعمل کرتا ہے، روایات کے اندر تعمل کرتا ہے، عقلی ریاضت کو آگے بڑھاتا ہے. اور ایک اور چیز کہ جس کے بارے میں ملا صدرہ خود بہت زیادہ فرماتے ہیں کہ وہ چیز بہت اہم چیز تھی، وہ خود سیر و سلوک، وہ خود معنوی ریاضتیں، وہ خود روحانی ریاضتیں، خود اپنے نفس کا تزکیہ، تہذیب، سیر و سلوک کی منزلیں، ان کو آ کر یہاں پر طے کرنا شروع کرتا ہے. خود اپنے باطن کو بھی صاف کرنا شروع کیا، اپنے نفس کی تربیت کرنا شروع کی، وہ سیر و سلوک کی منازل کو طے کرنا شروع کیا کہ اس ذریعے سے بھی، قرآن کے اندر تعمل کرنے سے بھی، روایات کے اندر تعمل کرنے سے بھی، عقلی مباحث میں بھی تعمل کرنے کے ذریعے سے ملا صدرہ نے بالآخرے ہمارے سامنے ان معرفتی مباحث کو سمجھنے کے لیے ایک سسٹم پیش کیا اور ایک نظام ہمارے سامنے دیا کہ اس سسٹم اور نظام کے تحت الحمدللہ کسی حد تک ہمارے لیے قرآن مجید کے اندر جو معاد کے بارے میں آیات ہیں، روایات بیان ہوئی ہیں، ان روایات کے بارے میں بھی کسی حد تک ہمیں بصیرت حاصل ہوتی ہے. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ شخصیت کہ جس نے معاد کے بارے میں اور ان معرفتی مباحث کے بارے میں اتنا بڑا کام کیا، لیکن ہمارے ہاں بالآخرے اس جیسی عظیم شخصیت کی بھی ناقدری ہوتی ہے. وہ بندہ بھی آ کر ملا صدرہ پر کمنٹ کرنا شروع کر دیتا ہے کہ جس بندے کو بالکل ابتدائیات کا بھی پتہ نہیں ہے. واقعاً ملا صدرہ کو معاد کے مسئلے میں برا بھلا کہنا اسی طریقے سے جیسے آج کے زمانے میں ایک وہابی آ کر شیعوں کو کہے کہ ان کے پاس توحید نہیں ہے. واقعاً وہ وہابی جو آ کر کہتا ہے کہ شیعوں کے پاس نظریہ توحید نہیں ہے، توحید کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، اگر ان لوگوں کو بھی کہا جائے کہ تم آؤ مکتب اہل بیت کو درست طریقے سے پڑھو، مکتب اہل بیت کو سمجھو، تو تمہیں پتا چلے گا کہ توحید مکتب اہل بیت میں کس طریقے سے بیان ہوئی ہے. تو بلا شبہ بلا تشبیہ میں اس بندے کو کہوں گا کہ جو بندہ آ کر ملا صدرہ کے بارے میں کہتا ہے کہ معاد میں وہ معاد جسمانی کا منکر ہے، نمی دنم فلاں کا منکر ہے، فلاں کا منکر ہے، اسی بندے کو میں دعوت دوں گا کہ اگر وہ آئے اور ملا صدرہ کے ساتھ اور اس کے آثار کے ساتھ حشر و نشر پیدا کرے، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کرے اور اس کے اصول و قواعد کو سمجھنے کی کوشش کرے، تو خود وہ سمجھے گا کہ معاد کے بحث میں جس طریقے سے ملا صدرہ نے گفتگو کی ہے، معاد کے بحث میں جس طریقے سے ملا صدرہ نے مباحث کو پیش کیا ہے، کسی نے پیش نہیں کیا ہے. اتنا دروازہ ہمارے لیے کھولا ہے کہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ خود ملا صدرہ نے جو قواعد و ضوابط بیان کیے ہیں، حالاں ان قواعد و ضوابط کو فنی طریقے سے تو ہم ان دروس میں نہیں بیان کر سکتے، لیکن انہی قواعد و ضوابط کی روشنی میں آئیں گے، دقت کے ساتھ خود آیات اور روایات کے بارے میں تأمل کرنے کی کوشش کریں گے کہ بالآخر آخرت کیا ہے، معاد کیا ہے، قبر کیا ہے، قبر کے بعد جو عالم برزخ ہے وہ عالم برزخ کیا ہے، قبر کی خصوصیات کیا ہیں، فشار قبر کسے کہتے ہیں، عالم برزخ کی خصوصیات کیا ہیں، پھر اس عالم برزخ کے بعد انسان جو آخرت میں منتقل ہوتا ہے اس سے کیا مراد ہے، آخرت کے اندر جتنے بھی مواقف ہیں ان مواقف سے کیا مراد ہے، یہ نامہ اعمال کیا ہے اور اس عالم آخرت کی خصوصیات کیا ہے، وہاں پر انسان کیسے مشہور ہوتا ہے، وہاں پر کیا ہے، اس کی کون کون سی خصوصیات ہیں، کہ قرآن مجید اور روایات میں بھی بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ ان مطالب کو بیان کیا گیا ہے. کہ انشاءاللہ آج تو یہ مقدماتی گفتگو میں ہمارا وقت بھی تمام ہو گیا، لیکن کوشش کریں گے کہ اس معاد کے بارے میں جتنے بھی مباحث ہیں ان مباحث کو تحلیلی انداز سے دیکھیں، कि मैंने जैसा कि शुरू में भी अर्ज किया था कि इन मबाहिस में मद्देनजर वो अखलाकी और मोहिजे वाला जंबा नहीं होगा बल्कि तहलीली जंबा होगा। तहलीली जंबे के साथ हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि माद के मबाहिस को आपके सामने पेश करें। खुदावंद मुताल आपको अपने हिफ्ज व अमान में रखे और हमें भी तौफीक दे कि इंशाल्लाह इस सिलसिले को आगे चला सकें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।